समाजवाद का इतिहास। यद्यपि एक शब्द के रूप में समाजवाद का प्रयोग काफ़ी बाद हुआ और एक विचारधारा के रूप में समाजवाद मूलतः आधुनिक युग की विचारधारा है, तथापि एक व्यापक अर्थ में मनुष्य की समानता या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अर्थ में अत्यंत प्राचीन काल में ही इस प्रकार की विचारधारा के दर्शन होते हैं। इसके प्रथम दर्शन ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित एमोस, होशिया, इसाइया, जेरेमिया आदि प्राचीन यहूदी पैगंबरों की वाणी में होते हैं, जिन्होंने धनिकों के अत्याचारों की निंदा कर एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की है जिसमें राजा धनिकों को दंड देकर निर्धनों के हितों की रक्षा करेगा। परंतु ये सब विचारक मूलतः समाजवादी ही थे, ऐसा नहीं। लैंडलर का कथन सत्य है कि ये सब विचारक नैतिकता और धर्म प्रधान विचारक थे, समाजवादी नहीं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य को चित्रण किया है, उसमें भी समाजवाद के बीज निहित हैं, क्योंकि प्लेटो का विचार है कि व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर देते हैं और इस कारण वह अपने आदर्श राज्य के प्रथम दो वर्गों, शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का निषेध करता है। प्लेटो के पश्चात रोमन युग तथा मध्ययुग में वर्जिल, होरेस और वाइलकिलफ जैसे पैगंबरों और विचारकों के द्वारा इसी प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया गया है और आधुनिक युग में सर टॉमस मूर की यूटोपिया को इसी श्रेणी में एक प्रमुख रचना कहा जा सकता है, जिसमें उसके द्वारा इंग्लैंड की तत्कालीन अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर कटु व्यंग करते हुए यूटोपिया नामक टापू की आदर्श व्यवस्था का चित्रण किया गया है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने परिश्रम से उत्पन्न वस्तुओं को एक स्थान पर रख देते हैं और वहां से आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त करते हैं। इस टापू में किसी भी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ना किसी को व्यक्तिगत संपत्ति की चाह है और इसी कारण इस टापू में शांति का अखंड साम्राज्य है। सर टॉमस मूर के पश्चात फ्रांसीसी बेकन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू एटलांटिक में तत्कालीन समाज की व्यवस्था का आलोचना करते हुए आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी स्थितियों में राज्य अथवा प्रस्थापित शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है वह भावुक और धार्मिक थी, राजनीतिक और आर्थिक नहीं। यहूदी और ईसाई पैगंबरों, प्लेटो और थॉमस मूर की रचनाओं में यद्यपि समाजवाद के दर्शन होते हैं, किंतु वस्तुतः उनमें समाजवाद के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। यह तो समाजवाद वस्तुतः संपूर्ण मानवीय जीवन से संबंधित मानवीय रचनाएं हैं, समाजवाद उनका एकमात्र विषय तो है ही नहीं, सामान्यतः यह उनका प्रमुख विषय ही है। समाजवाद की प्रमुख धारा। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद की बहुत प्राचीन विचारधारा नहीं है और इनका जन्म व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में 17वीं सदी में हुआ। इस समाजवादी धारा के भी दो रूप देखे जा सकते हैं, कल्पनावादी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। कल्पनावादी समाजवाद। आरंभिक समाजवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था की निंदा कर उसके स्थान पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया है, लेकिन ना तो उनके द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की तार्किक ढंग से व्याख्या की गई है और ना ही उनके द्वारा पूंजीवाद को समाप्त करने के उपाय बताए गए हैं। एंजिलस का कल्पनावादी समाजवाद के संबंध में कहना है कि आरंभिक दिनों में समाजवाद के निश्चित रूप में उत्पादन के स्थापित पूंजीवादी तरीकों और उनके परिणामों की कटु आलोचना की गई है, पर वे उनकी व्याख्या नहीं कर सके और इस कारण वे सफल नहीं हो सके। वे उसे बुरा कहकर केवल अस्वीकृत कर सकते हैं। कल्पनावादी विचारकों में नायल बावे, हेनरी सामसीमो, सेंट सागंस, चार्ल्स फॉरियर और रॉबर्ट ओवन प्रमुख हैं। इनके अंतिम तीन विचार अधि महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। नायल बाबे फ्रांस की राजक्रांति के बाद फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। फ्रांस की क्रांति में जीवन के सभी क्षेत्रों में मानव मात्र की समानता की घोषणा की गई थी, किंतु क्रांति के मात्र राजनीतिक समानता ही स्थापित हो सकी, आर्थिक समानता नहीं। रॉबस्पियर के पतन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि क्रांति का सबसे अधिक लाभ सट्टेबाजों और भूस्वामियों को हुआ है। ऐसी स्थिति में पहले नायल बावेफ ने व्यक्तिगत संपत्ति और आर्थिक विषमता के विरोध का मार्ग अपनाया। तत्कालीन व्यवस्था का विरोध करते हुए वह लिखता है, जब मैं देखता हूँ कि गरीबों के तन पर कपड़े न हैं और न पैरों में जूते, तथा यद्यपि गरीब लोग ही कपड़े और जूते बनाते हैं, तथापि उन्हें यह उपयोग के लिए नहीं मिलते, और जब मैं उन लोगों का ख्याल करता हूँ जो स्वयं कुछ भी काम नहीं करते पर उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो यह मेरा विश्वास हट जाता है कि राज्य अब भी जनसाधारण के विरुद्ध कुछ लोगों का षड्यंत्र मात्र ही है। बोवेफ ने इस बात पर बल दिया कि निजी संपत्ति का अंत कर समस्त संपत्ति पर राज्य का निर्धारण नियंत्रण स्थापित किया जाए और राज्य की अधीनता में संपत्ति का आवश्यकता अनुसार वितरण किया जाना चाहिए। उत्पादन व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सभी व्यक्तियों से कार्य लिया जाना चाहिए और कार्य के घंटे कानून द्वारा निश्चित होने चाहिए। समानों के षड्यंत्र के नाम से उसने अपनी विचारधारा को कार्य प्रदान करने का भी प्रयत्न किया, किंतु इसमें उसने सफलता नहीं प्राप्त की। उसके विचारों और योजना का भावी समाजवादी विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेडलर ने उसे पहला महत्वपूर्ण समाजवादी विचारक कहा है। हेनरी सासिमो। वाबिफ के अनुयायियों में हेनरी सासिमो का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। सासिमो का कहना था कि भूमि और पूंजी पर व्यक्तियों का नहीं वरन राष्ट्र का नियंत्रण होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य तथा वेतन मिलना चाहिए। सासिमो ने फ्रांस में समाजवाद को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। सेंट साइमन। सेंट साइमन का जन्म फ्रांस में हुआ था, उस पर फ्रांस की क्रांति का गंभीर प्रभाव पड़ा था। सेंट साइमन ईसाई धर्म का अनुयायी था और संभवतः निर्धन वर्ग के कल्याण की प्रेरणा से ईसा मसीह की शिक्षाओं से मिली। उसने यह अनुभव किया कि जनता पर से धर्म का प्रभाव क्रमशः घट रहा है और इस बात का प्रतिपादन किया कि सामाजिक और राजनीतिक सुधार तभी संभव हो सकते हैं जबकि उनका आधार आध्यात्मिक हो। वह ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता था जिसमें निर्धन वर्ग का कल्याण हो और इस संबंध में वह धनिकों को निर्धनों का त्रष्टि बनने की प्रेरणा देता था। सेंट साइमन का विचार था कि समस्त राजनीतिक परिवर्तनों का मूल आधार आर्थिक तथा उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तन ही हो रहे हैं, अतः उसके बाद राजनीतिक उत्पादन का विज्ञान कहा गया और उसकी धारणा है कि राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना हेतु उत्पादन के साधनों की प्रकृति को समझा जाना चाहिए। राजनीति को नितांत गौण और अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रमुख विषय मानते हुए उसने भविष्यवाणी की थी कि राजनीतिक अंतोगत व अर्थशास्त्र में विलीन हो जाएगी। साइमन की यह बात कार्ल मार्क्स के दंडात्मक भौतिकवाद की पूर्ण धारणा है। अपनी इस धारणा के आधार पर उसका कहना था कि सरकार का स्वरूप राजनीतिक के स्थान पर आर्थिक होना चाहिए और सरकार में प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय आधार पर नहीं वरन आर्थिक हितों और व्यवसाय के आधार पर होना चाहिए। साइमन समस्त सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहता है और उसका विश्वास था कि इस पुनर्गठन में वैज्ञानिक और कलाकारों को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि मानव जाति की प्रगति का कार्य इनसे ही संभव है। इस संबंध में उसके द्वारा एक विचित्र योजना 3 सदस्यों वाली पार्लियामेंट का सुझाव दिया गया था। इसके पहले आविष्कारक सदन के सदस्य इंजीनियर, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार और संगीतज्ञ होंगे। दूसरे परीक्षा सदन के सदस्य भौतिक शास्त्र और गणितज्ञ होंगे और तीसरे शासन सदस्य के सदस्य उद्योगपति होंगे। पहला सदन कानूनों को प्रस्तावित करेगा, दूसरा उसकी जांच करेगा और तीसरा उन्हें कार्यरूप में परिणित करेगा। साइमन के विचार उच्च और आदर्शवादी थे, किंतु वह उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने का उपाय नहीं बता सका। चार्ल्स फोरियर सेंट साइमन का समकालीन था। उसका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था और उसने अपना अधिकांश जीवन एक दुकान पर क्लर्क के रूप में बिताया। इस दुकान पर कार्य करते हुए उसे जो कटु अनुभव हुए, उन्होंने ही उसे पूंजीवाद का विरोध बना दिया। 5 वर्ष की आयु में जब उसने ग्राहकों को किसी वस्तु की सच्ची कीमत बतला दी तो उसे बहुत डांट पड़ी। 16 वर्ष की आयु में उसने अपने मालिक के आदर्श से चावल की बोरियां समुद्र में डुबानी पड़ी, जिससे चावल के दाम बढ़ जाएं और मालिक को लाभ हो। इन बातों से उसके सामने पूंजीवाद के दोष, झूठ, अपव्यय, बर्बादी और विनाश नितांत स्पष्ट कर दिए। फोरियर का विचार है कि व्यक्ति स्वभाव से श्रेष्ठ होता है, किंतु परिस्थितियां उसे कुमार्ग पर ले जाती हैं। उसने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की कटु आलोचना की। निर्धनता, सामाजिक असमानता और युद्ध के लिए वह निजी संपत्ति की व्यवस्था को उत्तरदायी मानता है और उसका विचार है कि पारिवारिक जीवन भी इसी कारण असफल रहता है। वह प्रतियोगिता प्रणाली का अंत कर एक न्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में था। पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए उसने एक विस्तृत और विचित्र सी योजना प्रस्तुत की, जिसे फ्लेक्सिया ऐच्छिक समुदाय की योजना कहा जाता है। उसका कहना था कि लगभग 2000 सदस्यों के छोटे छोटे समाजों का निर्माण किया जाना चाहिए। वे समस्त सदस्य मिलकर आर्थिक उत्पादन करें और सबको आवश्यकता के अनुसार निश्चित पारिश्रमिक मिले और उसके पश्चात जो शेष रहे उसे 1/3, 1/5 और 1/8 के अनुपात में क्रमशः पूंजी, श्रम और विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों में वितरित कर दिया जाए। फोरियर मूलतः एक सहकारवादी और विकेंद्रीकरण का समर्थक था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में प्रमुख और अपने समय का प्रभावशाली विचारक था। ओवेन पहला व्यक्ति था जिसने समाजवाद का प्रयोग किया। ओवेन के विचार उसकी 2 पुस्तकों ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी और द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड में देखे जा सकते हैं। निर्धनता के संप्रभुता का और बढ़ते हुए ओवन ने यह निश्चय धारणा की थी कि मनुष्य की उन्नति परिस्थितियों पर निर्भर करती है और परिस्थितियां सुधार होने पर वह निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। उसने 1766 में न्यू लेनार्क की सूती कपड़ा मिल को खरीद कर इसे एक आदर्श बस्ती के रूप में परिणित कर दिया। न्यू लेनार्क के परीक्षण की सफलता का प्रमाण यह था कि जब रुई के अभाव में 4 माह के लिए मिल बंद हो गई, तब भी ओवेन ने मजदूरों को वेतन देना जारी रखा। ओवेन का विचार था कि रोजगार दिलाने के लिए एक श्रम कार्यालय स्थापित किया जाए, मजदूरों के कार्य करने के अधिकतम घंटे निश्चित किए जाएं और 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकर में ना रखा जाए। न्यू लेनार्क के परीक्षण में तो ओवेन सफल हुआ, किंतु इसके बाद वह कल्पनावादी हो गया। उसने उत्तरी अमेरिका के इंडियाना राज्य में एक सहकारी बस्ती न्यू हार्मनी बसाई, लेकिन कुप्रंध, अनियंत्रित व्यक्तिवाद और बौद्धिक मतभेदों के कारण यह परीक्षण असफल रहा। उसने 1766 में प्रथम श्रमिक कांग्रेस की अध्यक्षता की। इंग्लैंड के फैक्ट्री एक्ट बनवाने का श्रेय ओवन को ही प्राप्त है। रॉबर्ट ओवन की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में और भी समाजवादी विचारक हुए, इनमें विलियम थॉम्पेंस तथा टॉमस हॉजकिंस प्रमुख हैं। इस परंपरा ने कुछ अन्य विचारकों को भी प्रभावित किया। इंग्लैंड की भांति अमेरिका में भी काल्पनिक समाजवादी हुए, जिनमें अल्बर्ट बिस्प्रेन तथा चार्ल्स डैना प्रमुख थे। कल्पनावादी समाजवाद के एक दर्शन और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रकाश प्रदान किया। वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स और एंजेलिस द्वारा प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण अनिवार्यतः पूर्वकालीन समाजवादियों की अपेक्षा पूर्णतः वैज्ञानिक था। मार्क्स से पूर्व के समाजवादी विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु उन्होंने यह भी नहीं बतलाया था कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन भी प्रदान नहीं किया था। इसी कारण इनकी विचारधारा को कल्पनावादी समाजवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स ने आधुनिक समाज का बड़ी गूढ़ता और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। उसने पूंजीवादी के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्गविहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण किया है। उसके द्वारा दंडात्मक भौतिकवाद तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक के घटनाचक्र की व्याख्या प्रस्तुत की गई है और इस प्रकार उसने समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। केवल इतना ही नहीं, वरन समाजवादी व्यवस्था का स्थापना के उद्देश्य से उसके द्वारा विश्व के मजदूरों की एक हो जाओ के एक शब्दों में श्रमिक वर्ग के क्रांति का आह्वान किया गया है। उसके द्वारा श्रमिक वर्ग को संगठित करने का भी प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया और इस दृष्टि से वह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना का महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार उसने विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बतलाया है। विकासवादी समाजवाद। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद को एक दूसरे नाम से क्रांतिकारी समाजवाद से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यद्यपि मार्क्स विश्व के कुछ देशों में पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना के लिए प्रजातंत्रात्मक पद्धति के रूप और देखता है, लेकिन उसकी सामान्य विचारधारा यही है कि पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति का मार्ग अपनाना चाहिए। उसके द्वारा वर्ग संघर्ष की भावना को तीव्रतम रूप प्रदान करने के लिए और विश्व के मजदूरों को एक हो जाओ इस प्रकार के नारे लगाने से भी क्रांति की बात स्पष्ट होती है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा को विश्व के अनेक देशों में अपनाया गया, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका जैसे कुछ देशों में प्रजातंत्र के प्रति अपना आस्था बहुत दृढ़ होने के और सामान्य विचारधारा क्रांति के विरुद्ध होने के कारण मार्क्सवाद या क्रांति समाजवाद के स्थान पर विकासवादी समाजवाद को अपनाया गया। विकासवादी समाजवाद का आशय यह है कि पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति नहीं वरन संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। विकासवादी समाजवाद के अनेक रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं समिष्टवादी, फैबियनवादी, संशोधनवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद। विकासवादी समाजवाद के कुछ प्रमुख प्रतिपादक हैं सिडनी और ब्रेटी वेव, जॉर्ज बंडास शाह, प्रोफेसर ग्राहम वालेस, एनी बेसेंट, आर एच टोनी, रेमजे मैकडॉनल्ड, एटली, हैरल्ड लॉस्की, इवान एफ डर्बिन और जी डी एच कोल। अमेरिका में विकासवादी समाजवाद का प्रतिपादन नॉर्मन थॉमस के द्वारा किया गया और भारतीय समाजवाद के प्रणेताओं में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और पंडित नेहरू को भी विकासवादी समाजवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है।